रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भगवान के परम मित्र श्री सुग्रीव और उनके परम भक्त वायुपुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार सुबाहु का वध किया और मारीच को दूर भगाया भगवान ने, और फिर मिथिला की ओर चलने लगे। चलते चलते विशालापुरी नाम के एक स्थान में आए, जहाँ का इतिहास विश्वामित्र मुनि भगवान श्री राम को बताने लगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और इस इतिहास को बताते हुए, उस स्थान के इतिहास को बताते हुए उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का वर्णन किया। हम लोग सुन रहे थे कि समुद्र मंथन में कैसे, जब मंथन प्रारंभ हुआ, भगवान की इच्छा थी कि किसी को कष्ट नहीं पहुँचे, इसीलिए स्वयं वासुकी के मुख की ओर वो खड़े रहना चाहते थे। लेकिन असुरों ने सोचा कि वो चीज़ अच्छी है, वो स्थान अच्छा है। असुरी स्वभाव था, भगवान के विरुद्ध थे, इसीलिए उन्होंने उस स्थान को ग्रहण किया। मंथन प्रारंभ हुआ और सबसे पहले विष निकला। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इसी तरह जब हम अपनी चेतना का मंथन करते हैं, जब हम भगवान के निकट आना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जब मंथन प्रारंभ होता है चेतना का, तो कई जन्मों के जो पापपूर्ण इच्छाएं हैं वो विष के समान ऊपर की ओर आती हैं, और उस विष का निवारण देवताओं ने शिव जी के पास जाकर किया। इसी प्रकार जब हम भक्ति में आते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे शिव जी ने विष का पान किया, ऐसे ही गुरु हमारे सारे पापों के फलों को नाश कर देते हैं। वैसे प्रश्न ये भी आता है कि शिव जी ने विष का पान किया ही क्यों, क्या आवश्यकता थी? भागवत में इसका वर्णन किया गया है। शिव जी जानते थे कि अगर वो विष का पान करने जाएंगे तो फिर उनकी पत्नी भवानी देवी, पार्वती देवी, उनको अच्छा नहीं लगेगा। कौन ऐसी पत्नी होगी जिसे ये बड़ा प्रिय लगेगा कि मेरे पति जाकर बहुत अच्छी तरह से विष का पान करें? तो इसीलिए उन्होंने समझाया कि क्यों वो विष का पान कर रहे हैं। तो उन्होंने कई कारण दिए विष का पान करने के। पहला कारण उन्होंने दिया कि देखो, देवता कितने खतरे में हैं। स्वाभाविक था, वो विष चारों ओर फैल रहा था, पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा था, तो इसलिए खतरा बढ़ रहा था। देवता, असुर इत्यादि हाहाकार मचाकर भाग रहे थे। तो पहला कारण उन्होंने दिया कि देखो कितने खतरे में हैं ये लोग, इसलिए मुझे विष का पान करना है। दूसरा कारण उन्होंने दिया कि मेरा कर्तव्य है विष का पान करना, और उन्होंने कहा एक स्वामी का कर्तव्य होता है कि वो अपने आश्रितों की रक्षा करे, तो इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं विष का पान करूं। तीसरा कारण उन्होंने दिया कि मैं जानता हूं कि अगर मैं विष का पान करूंगा तो इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे। और चौथा कारण जो शिव जी ने दिया कि ये मैं विष का पान सभी जीवों की प्रसन्नता के लिए करूंगा। तो ऐसे कारण उन्होंने दिए विष के पान के लिए। अब यही कारण है एक आध्यात्मिक गुरु के इस जगत में आने के, इस जगत में कष्ट सहने के और हम सब जीवों के प्रति अपनी करुणा बरसाने के। पहला कारण शिव जी ने दिया कि कितने खतरे में है देवता, अगर मैंने विष का पान नहीं किया तो फिर इनके प्राणों का क्या होगा। एक आध्यात्मिक गुरु जैसे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने भी यही देखा कितने खतरे में है ये सब, सोच रहे हैं कि बड़े आनंद में हैं, जानते नहीं हैं कि भगवान से दूर जाने में कितना खतरा है। बहुत मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन अब केवल अपनी इच्छाओं को नियंत्रित न रख पाने के कारण, एक धार्मिक जीवन न जीने के कारण कितने बड़े खतरे में ये लोग अपने आप को डाल रहे हैं। फिर से 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। तो पहला कारण आध्यात्मिक गुरु सोचते हैं कि मुझे इनको ज्ञान देना चाहिए, इनका जो विष है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, इनके हृदय में जो दुर्भावनाएं हैं, अनर्थ हैं, उनको ग्रहण कर लेना चाहिए, इनके जो पापों के फल हैं उनको ग्रहण कर लेना चाहिए ताकि मैं इनको खतरे से बचा सकूं। दूसरा कारण शिव जी ने दिया कि खतरा तो ठीक है लेकिन मेरा कर्तव्य भी है, और एक आध्यात्मिक गुरु अपना कर्तव्य मानते हुए हम सब जीवों के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद अपना कर्तव्य मानते हुए अपने बहुत आराम के जीवन को त्याग कर पाश्चात्य देशों में चले गए। किस लिए? उन्होंने कहा मेरा कर्तव्य है, मेरे गुरु का आदेश है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मुझे एक धार्मिक जीवन खुद जीना है और साथ ही साथ लोगों को भी सिखलाना है। तो कर्तव्य मानकर भी श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया। यह हर आध्यात्मिक गुरु, हर प्रचारक का कर्तव्य है, हमें जो मिला है उसे हमें दूसरों को देना चाहिए, चाहे हमारी कितनी ही क्षमता क्यों ना हो। अपनी क्षमता के अनुसार हमें जो भी प्राप्त हुआ है कृष्ण भावनामृत में, उसे दूसरों में बांटना चाहिए। हाँ, हो सकता है हमारी क्षमता हनुमान जी की तरह हो जो बहुत बड़े बड़े पर्वत उठा सकें, या हमारी क्षमता एक गिलहरी की तरह हो जो केवल रेत के कणों को उठा सके, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार हमें प्रचार करना चाहिए, हमें भगवान श्री कृष्ण के संदेश को लोगों को बांटना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हनुमान जी की तरह हैं, उन्होंने प्रचार हनुमान जी की तरह किया, बड़े बड़े पर्वत, और हम जब प्रचार करते हैं तो हम गिलहरी की तरह हैं, लेकिन फिर भी अपनी क्षमता अनुसार हमें करना चाहिए, कर्तव्य मानना चाहिए। तो पहली चीज प्रभुपाद ने देखी कि ये लोग खतरे में हैं, दूसरी चीज प्रभुपाद ने माना कि मेरा कर्तव्य है प्रचार करना, मेरे गुरु का आदेश है, इसलिए अपने कर्तव्य के लिए भी कहे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो शिव जी ने कही वो ये थी कि इससे श्री हरि प्रसन्न होंगे। क्यों प्रसन्न होंगे श्री हरि? इसलिए प्रसन्न होंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की रक्षा करता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की मदद करता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए जीवन जीता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि दूसरे के लिए जीवन जीना का अर्थ है हृदय में वैराग्य की भावना। स्वार्थी व्यक्ति कभी वैरागी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, तो इसलिए वैराग्य नहीं आता। और जब वैराग्य नहीं आता तो फिर कृष्ण की ओर नहीं जा पाता। इसीलिए श्री हरि भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम दूसरों को प्रचार करते हैं, जब हम लोगों की रक्षा करते हैं, अपने बल पर नहीं, आचार्यों के बल पर, भगवान के बल पर, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, और सबसे अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम दूसरों को भगवान के निकट लाते हैं। तो शिव जी ने तीसरा कारण दिया था, और चौथा कारण शिव जी ने दिया कि सभी की प्रसन्नता के लिए मुझे इस विष का पान करना है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रील प्रभुपाद ने विष का पान किया। 70 वर्ष की उम्र में पाश्चात्य देशों में गए, ऐसे स्थानों में जहाँ भक्ति नहीं थी, भक्त नहीं थे, कोई मान सम्मान नहीं था, अपमान करने वाले लोग थे, अनादर करने वाले लोग थे। रात्रि के समय श्रील प्रभुपाद को 12 बजे सड़क पर फेंक देने वाले लोग थे। इस सारे विष का पान किया, सन्यासी होते हुए ऐसे स्थानों में रहे जहां पर उनके भोजन के साथ साथ कुत्ते को देने वाला मांस का टुकड़ा रखा जाता था। प्रभुपाद ने विष का पान किया श्री हरि की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और अंततः सभी जीवों को सुख प्रदान करने के लिए। शिव जी ने विष का पान किया, इसी तरह प्रभुपाद ने भी किया। इतनी उम्र में भी कितना सारा भ्रमण किया, कहाँ कहाँ नहीं गए श्रील प्रभुपाद। ऐसी उम्र में तो कोई अपने घर से भी बाहर नहीं निकलता, और प्रभुपाद ने तो वृंदावन क्या भारत छोड़ा, और फिर जहाँ भी गए वहाँ काफी समय नहीं रहे, खूब प्रचार किया। तो श्रील प्रभुपाद ने भी इस विष का पान किया केवल सभी की प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए शिवजी ऐसा वर्णन करते हैं। तो खैर, जब विष उत्पन्न हुआ और शिव जी से प्रार्थना हुई, शिव जी ने सारा विष इकट्ठा कर लिया जो पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था, और फिर शिव जी ने उसका पान किया और अपने गले तक ही रखा, इसीलिए उनका नाम हुआ नीलकंठ। और फिर उसके बाद सुरभि गायें आई। सुरभि या गायें, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसका हर अंग शुद्ध है, ये इतनी शुद्ध है कि इसका गोबर और गोमूत्र भी शुद्ध माना जाता है। पुराणों में गोमूत्र की तुलना भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा से की गई है, बड़ा शुद्ध माना गया है गोमूत्र को। तो गाय का हर अंग शुद्ध है, गाय का हर पदार्थ शुद्ध है, और इसीलिए विष के बाद गाय प्रकट हुई, सुरभि प्रकट हुई। जब हम अपनी चेतना का मंथन करते हैं तो पहले तो विष प्रकट होता है, जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी, हमारे पूर्व किए गए पाप, इच्छाएं, ये सारी प्रकट होने लगती हैं। लेकिन फिर जब हम बड़ी कड़ाई से, बड़ी दृढ़ता से इस नियम का पालन करते हैं कि हम गुरु के आदेश को शतशः माने, जैसे कि देवताओं ने और असुरों ने भी किया, सब शिव जी की मानने, ठीक है शिव जी आप आइए और विष का पान कीजिए। तो जब एक साधक ऐसी अवस्था में जहां चेतना का मंथन हो रहा है, गुरु को समर्पण करता है, तो गुरु उस विष को तो ले ही लेते हैं, साथ ही साथ उसके बाद एक शुद्ध जीवन प्रदान करते हैं, गाय। क्यों गाय आई? क्योंकि गाय का हर अंग शुद्ध है। इसी तरह भक्ति में जब साधक अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन का हर पहलू शुद्ध होने लगता है। पहले तो केवल अशुद्धता होती है, लेकिन धीरे धीरे शुद्धता बढ़ती है। वाचा की शुद्धता, दृष्टि की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, भावनाओं की शुद्धता और अंततः चेतना की शुद्धता। तो ये शुद्ध जीवन है, इसलिए सुर भी आई, ये दर्शाने के लिए कि जब चेतना का मंथन होता है तो हाँ पहले विष निकलता है, बहुत कष्ट होता है। हम सोचते हैं कि ये आध्यात्मिक जीवन हमारे लिए नहीं है, बड़ा कड़ा जीवन है, लेकिन फिर गाय सुर भी प्रकट होती है, शुद्ध जीवन। दूसरे शब्दों में एक साधक के लिए शुरुआत की अवस्था जहां वो कृष्ण भावनामृत का कड़ाई से पालन करता है, बहुत से ऐसी बाधाओं को प्रकट करती है जो भक्ति में आगे बढ़ने में उसे रोकती हैं, वो विष के समान है। लेकिन अगर वो गुरु को समर्पण करता है, गुरु के आदेशों का शतशः पालन करता है, तो फिर वो बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। जैसे शिव जी ने सारी जगह पर व्याप्त, ये जो विष पूरा व्याप्त था, इसका अर्थ है कि बाधाएं और दुख और दोष हमारी सारी चेतना में व्याप्त रहते हैं, हमारे सारे भौतिक अस्तित्व में व्याप्त रहते, सारा भौतिक ब्रह्मांड केवल दुखों का सागर दिखाई देता है, दोष ही दोष दिखते हैं। लेकिन एक गुरु को समर्पण करने से फिर हम सुरभि को देख पाते हैं, अर्थात फिर हम एक शुद्ध जीवन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा शुद्ध जीवन जहां कोई पाप नहीं है, ऐसा शुद्ध जीवन जहां हर चीज में शुद्धता है, जो घृणित कार्य भी समझा जाता है वो भी शुद्ध है। गाय का गोबर शुद्ध माना जाता है, वैसे तो जो किसी भी प्राणी का मल होता है वो गंदा माना गया है, उसको स्पर्श भी नहीं किया जाता, अगर स्पर्श कर ले तो फिर नहाना पड़ता है, भगवान के मंदिर में अंदर नहीं जा सकते सेवा में। लेकिन गोबर को तो अंदर ले जाया जाता है, भगवान का अभिषेक कराया जाता है गोबर से, अर्थात जो घृणित चीज है वो भी शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार ये भक्ति है, भक्ति में तथाकथित घृणित कार्य भी एक भक्त के द्वारा किए गए शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। जैसे अर्जुन ने हत्या की, लेकिन वो शुद्ध भक्ति थी। परीक्षित महाराज ने एक मरे हुए सांप को डाल दिया, शुद्ध जीवन था, भगवान की योजना थी, उसमें कोई अशुद्धता नहीं थी। अर्जुन के हत्या करने में कोई अशुद्धता नहीं थी, कोई पाप नहीं था, शुद्ध भक्ति थी, क्योंकि अर्जुन भगवान की इच्छा के लिए कर रहा था, अपने मन से नहीं। भगवान ने कहा था उससे कि मुझे स्मरण करते हुए, माम अनुस्मर युद्धे च, आप युद्ध करो लेकिन मुझे स्मरण करते हुए। तो जो कार्य भगवान को स्मरण करते हुए किया जाए वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? हम लोग तो अगर भगवान का स्मरण मात्र कर लें तो शुद्ध हो जाते हैं। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरे पुंडरीकाक्षम सब बाह्यभ्यंतर शुचिः। जो व्यक्ति केवल भगवान का स्मरण मात्र कर लेता है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से शुद्ध हो जाता है। और फिर अर्जुन ने तो सतत स्मरण किया भगवान का, युद्ध किस लिए किया? भगवान के लिए। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, भगवान ने अर्जुन से कहा तुम तो निमित्त हो, केवल निमित्त ही बने रहो, अपने आप को कर्ता नहीं मानो। जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं तब हमें फल लगता है, लेकिन जब हम अपने आप को निमित्त मानते हैं तो फल नहीं लगता, कर्म फल नहीं मिलता। कर्म फल तब तक है जब तक अपने को कर्ता मानते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, जब तक हम ये मन्यते, ये मानते रहते हैं कि हम कर्ता हैं, तब तक कष्ट है जीवन में। लेकिन जब निमित्त मानते हैं तो कोई कष्ट नहीं है, कोई पाप नहीं है, अर्जुन के वध करने में कोई पाप नहीं थे, वो निमित्त था, इच्छा भगवान की थी। परीक्षित महाराज के एक मरा हुआ सांप डालने में कोई पाप नहीं है, वो निमित्त थे, इच्छा भगवान की थी। भीष्म देव के भगवान पर तीर चलाने में कोई पाप नहीं है, वो निमित्त थे, इच्छा भगवान की थी। ये भक्ति है। तो इसीलिए शुद्ध जीवन की ओर हमें बढ़ना चाहिए। जब हम शुरुआत की अवस्था में गुरु को समर्पण कर दें, तो गुरु को समर्पण करके अब उनके बताए हुए मार्ग पर जब हम बड़ी कड़ाई से चलते हैं तो शुद्ध जीवन आता है। और कहाँ कहाँ शुद्धता होनी चाहिए? जीवन की हर अवस्था में शुद्धता होनी चाहिए। वैष्णव वो है जिसके सारे अस्तित्व में भगवान व्याप्त हो, उसे वैष्णव कहते हैं। ये परिभाषा भी शिव जी ने दी है। शिव जी ने महाभारत में ये परिभाषा दी है, जब वो जयद्रथ को कह रहे थे, जयद्रथ ने कहा कि मैं पांडवों को जीतना चाहता हूं, तो उस समय शिव जी ने कहा, तुम जानते नहीं हो ये अर्जुन कौन है और ये कृष्ण कौन है, ये नर नारायण है, इसलिए इनको जीतना असंभव है। और उस समय उन्होंने परिभाषा दी वैष्णव शब्द की, कि जब भगवान वामन देव आए थे तो उन्होंने सारे ब्रह्मांड में अपने को फैला लिया, और क्योंकि सारे ब्रह्मांड में भगवान व्याप्त हो गए इसीलिए ब्रह्मांड भी वैष्णव कहलाया। तो वैष्णव मतलब सारे अस्तित्व में भगवान व्याप्त हो, उसे वैष्णव कहते हैं। और शुद्ध जीवन से ये संभव है, अशुद्ध स्थान पर भगवान नहीं आते। इसीलिए हमारी वाचा, हमारे विचार, हमारी चेतना, हमारी दृष्टि, हमारी भावनाएं सब शुद्ध होनी चाहिए। धीरे 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 हमें ऐसे स्तर तक बढ़ना चाहिए जहां पूर्ण शुद्ध जीवन हो, और ये संभव है भगवान के नाम के उच्चारण से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान का नाम क्या है? पूर्ण शुद्ध। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनः। भगवान से भिन्न नहीं है नाम, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है। इसीलिए ऐसे नाम के उच्चारण से हम शुद्ध जीवन को ला सकते हैं। तो इसीलिए जब मंथन प्रारंभ हुआ तो पहले विष और फिर सुरभि गायें आई, ये दिखलाने के लिए कि अब हमें अपने जीवन में पवित्रता लानी चाहिए। अगर हम कृष्ण की ओर जाना चाहते हैं, हम उस अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं। मंथन का अंतिम उद्देश्य क्या था? मंथन का अंतिम उद्देश्य उस समय के लिए तो अमृत प्राप्त करना था। इसी तरह हमारी चेतना के मंथन का अंतिम उद्देश्य क्या है? कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करना, उस अमृत को प्राप्त करना जो ऐसे कई अमृतों से श्रेष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी भागवत की कथा कहने जा रहे थे परीक्षित महाराज को, देवता इस अमृत को ले आए जो इस मंथन से प्राप्त हुआ था, और कहने लगे सुखदेव गोस्वामी को कि आप ये अमृत उसे दे दीजिए, परीक्षित को, उसकी मृत्यु होने वाली है, मरेगा नहीं, और हमें आप उसके बदले में भागवत सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जहां तक मेरी आवाज जाती है वहां तक ये देवता रहने नहीं चाहिए, बाहर कर दो इन्हें। तो सब हैरान हो गए कि क्या हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इन्होंने कृष्ण कथा की तुलना एक अमृत से कर दी है, मतलब उसकी स्थिति को बड़ा नीचा कर दिया है, इसलिए योग्य नहीं है कृष्ण कथा सुनने के लिए, इन्हें बाहर कर दीजिए। तो हमारी चेतना का मंथन का उद्देश्य है कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करना, उस अमृत को प्राप्त करना जो इस भौतिक जगत के सभी प्रकार के अमृतों से श्रेष्ठ है। सच्चा अमृत है कृष्ण भावना अमृत, उसको प्राप्त करना और उसके लिए शुद्ध जीवन जीना बहुत आवश्यक है। प्रारंभ करना चाहिए अपनी वाचा से, सतत भगवान का नाम लेना, भगवान के विषय में चिंतन करना, बातें करना। तो जब हमारी वाचा शुद्ध होगी तो धीरे धीरे अन्य स्थानों पर भी शुद्धता आएगी। इसीलिए हमें, चाहे हम किसी भी स्थान में क्यों ना हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, कोई भी स्थान में क्यों ना हो, वैसे तो मनुष्य जीवन शापित जीवन है। हम पुराणों में देखते हैं कभी किसी देवता को श्राप मिलता है, उसे कहते हैं जाओ मृत्यु लोक में मनुष्य बन जाओ। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मनुष्य मत बनाइए। तो कहते अच्छा ठीक है, थोड़ी देर रहो फिर आ जाना। तो मतलब शापित जीवन है ये मनुष्य जीवन, कोई बनना नहीं चाहता। फिर उस शापित जीवन में अगर कोई और पारिवारिक जीवन में फंस जाता है तो और ज्यादा है। हाँ, लेकिन पारिवारिक जीवन में रहते हुए अगर कोई भक्ति करता है तो वो वरदान है। वैसे पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई उस जीवन में भक्ति करता है जैसे आप सब लोग कर रहे हैं तो पारिवारिक जीवन वरदान बन जाता है। तो भक्ति शाप को वरदान में बदलती है। मनुष्य जीवन शापित है, लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो यही मनुष्य जीवन वरदान हो जाता है। और ऐसा वरदान कि देवता भी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि कलयुग में, भारतवर्ष में हमें मनुष्य जीवन दीजिए ताकि हम भक्ति करके आपके धाम को प्राप्त कर सके। तो देखिए, शाप को वरदान में हम बदल सकते हैं। हम अभी 2-3 दिन पहले जब भागवत क्लास दे रहे थे तो हमने कुछ गृहस्थ जीवन के विषय में कहा था। प्रभुपाद ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, कुछ भक्तों को अच्छा नहीं लगा वो शब्द, लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहे उनके लिए था और वो सही भी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो लोग भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो तो मृत देह के समान है, मरे हुए हैं, चलते फिरते मुर्दे हैं। आप सोचिए, अचानक अगर मुर्दा उठकर चलने लगे, शरीर मृत शरीर पड़ा है, उठकर चलने लगे, कुछ कार्य करने लगे, किसको अच्छा लगेगा? तो जो भक्ति नहीं कर रहे वो तो मृत शरीर है। पद्म पुराण में भी यही कहा गया है, विष्णु भक्त सुर अप्रोक्ता असुर तद विप्रया, कि जो भगवान के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, सुरह प्रोक्ता, उन्हें सुर कहा जाता है, देवता कहा जाता है। और असुरह, असुर क्या है? तद विप्रया, उसके विपरीत जो भी है वो असुर है। तो इसीलिए जीवन शापित हो सकता है, कष्टमय हो सकता है, लेकिन भक्ति के द्वारा हम इसे वरदान में बदलते हैं। इसीलिए वरदान माना गया है इस भारत भूमि में जन्म लेना, कलयुग में, और भगवान के भक्तों के संग में आना और भगवान के नाम का उच्चारण करना। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसे और बहुत सारी चीजें आई। अब अगर हम लोग एक एक चीज की चर्चा करते रहें तो ये मंथन कई महीनों तक चल सकता है। कथा रामायण की है, इसीलिए अब आगे थोड़ा बढ़ना चाहेंगे। हाँ, उसके बाद एक घोड़ा आया उच्च श्रवा, जिसे बलि महाराज ने ले लिया। इंद्र ने विरोध नहीं किया क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा था देवताओं से समुद्र मंथन के पहले कि तुम कोई विरोध नहीं करना, जैसा असुर कहें वैसा कर लेना। तो फिर बलि महाराज ने ले लिया, फिर ऐरावत आया उसको इंद्र ने ले लिया, फिर और कई हाथी आए, हथनियाँ आई, और उसके बाद वारुणी आई, फिर उसके बाद अप्सराएं आई, कई कई अप्सराएं निकली जिनको स्वर्ग में भेज दिया गया। उन्हें अप्सरा कहा ही इसीलिए गया, अप यानी पानी, जल, और सार, तो जल के जो सार से निकली इसीलिए उन्हें अप्सरा कहा गया। भगवद गीता में हम लोग पढ़ते हैं ना, भूमि रापो नलो वायु आप, तो इसलिए जो जल से प्रकट हुई या जल के सार से प्रकट हुई, मंथन हो रहा था, जल का सार निकल रहा था, तो जो जल के सार से आई वो अप्सरा कहलाई। तो फिर अप्सराओं को भेज दिया गया और फिर लक्ष्मी देवी भी आई, वो भी समुद्र से ही प्रकट हुई हैं, भाग्य की देवी लक्ष्मी देवी, जिन्हें देखकर असुर देवता सब प्रभावित हो गए। लक्ष्मी से कौन प्रभावित नहीं होता है, इस जगत में तो है ही हम सब, सारे कार्य लक्ष्मी के लिए है, नारायण को कोई नहीं चाहता। तो वहां भी ऐसा ही हुआ, लक्ष्मी देवी आई तो सब, और इतना ही नहीं, ऐसा वर्णन है कि उनको बड़े अच्छे सिंहासन पर बिठाया गया, उनकी पूजा अर्चना की गई, उनको सारी बड़ी बड़ी चीजें तोहफे लाकर देने लगे, उपहार लाकर देने लगे। ये जगत भी ऐसा ही है, हम सब लक्ष्मी के पीछे, वहां नारायण थे, ऐसा नहीं था भगवान नहीं थे। शुरुआत में हमने बताया था भगवान ने अवतार लिया था, भगवान थे वहां, किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब लक्ष्मी देवी। ऐसा ये जगत है, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि हम धन से ऐश्वर्य से संपदा से सुखी हो सकते हैं, लेकिन सुख नहीं है। जिन लोगों के पास धन नहीं है वो सोचते हैं हम धन से सुखी हो जाएंगे, जिनके पास धन है वो ऐसे निर्धन लोगों को देखकर सोचते हैं कि ये सुखी कैसे हैं, सुख आता कहाँ से है, मेरे पास इतना धन है लेकिन ये सुख नहीं है। प्रभुपाद को पाश्चात्य देशों में कभी कभी पूछा जाता था, ये आपके जो शिष्य हैं इनके चेहरे इतने चमकते कैसे हैं, ये क्या करते हैं, क्योंकि इतना धन होने पर भी कोई सुख नहीं है। निर्धन, तो निर्धन व्यक्ति वो है, ऐसा नहीं कि जिसके पास भौतिक दृष्टि से धन नहीं है, निष्किंचन या निर्धन व्यक्ति उसे कहते हैं जो आसक्त नहीं है। तो इस जगत में लक्ष्मी के पीछे सब भाग रहे हैं, सोचते हैं उसी से आनंद मिलेगा, संपदा से आनंद मिलेगा, लेकिन वो आनंद नहीं देती, क्योंकि लक्ष्मी देवी आई और उस समय फिर उनके हाथ में एक वरमाला दी गई और सारे असुर सारे देवता इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बहुत सुंदर थी लक्ष्मी देवी, भाग्य की देवी है, सुंदरता की मूर्तिमान स्वरूप है। लेकिन उन्होंने सब में दोष देखा, लक्ष्मी देवी देखने लगी किसी व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे गुण हैं लेकिन बुरे भी हैं, या तो उसके अंदर अच्छे गुण हैं लेकिन उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, या मरने वाला है, या तो फिर उसके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, और अगर ऐश्वर्य है तो गुण नहीं है, ऐसे बहुत से दोष देखे लक्ष्मी देवी ने सब में, ये सिखलाने के लिए कि केवल श्री कृष्ण ही पूर्ण है, हम सब अपूर्ण हैं, हम सब में कोई ना कोई दोष है, हाँ गुण भी है लेकिन हम परिपूर्ण नहीं है, हमारे अंदर कोई ना कोई दोष बने रहते हैं। ये जगत है ही ऐसा, एक चीज है तो दूसरी नहीं, असंतुष्टि लाती है। किसी के पास सौंदर्य है तो बल नहीं है, बल है तो धन नहीं है, धन है तो यश नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण परिपूर्ण है। तो अंततः लक्ष्मी देवी ने वरमाला भगवान के गले में डाली, ये दिखलाने के लिए कि बाकी सब में दोष है, एक ही व्यक्ति परिपूर्ण है। तो ऐसे ही मंथन हुआ, किसी और समय रामायण की कथा में नहीं, किसी और समय केवल समुद्र मंथन का वर्णन करेंगे, कैसे एक एक चीजें आई और कैसे हम उन्हें अपने भक्ति के जीवन में। जय श्री श्री राधा गोकुल अनंत की, उतार सकते हैं। तो समुद्र मंथन की कथा सुनाई और कहा कि समुद्र मंथन में जब मोहिनी अवतार हुआ तो समुद्र मंथन का अंत क्या हुआ, अमृत आया, असुरों ने छीन लिया और सारे देवता फिर दुखी हो गए, भगवान की ओर देखने लगे और भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुरा इसलिए रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि मेरे भक्त हर कष्ट में केवल मेरी ओर ही मुड़ते हैं। तो ये भक्तों का लक्षण है, देवता सब तुरंत भगवान की ओर देखने लगे, अब हम क्या करें, ये भक्तों का लक्षण है, हर स्थिति में भगवान की ओर मुड़ना चाहिए। तो भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, मैं अभी देवत असुरों के हृदय में प्रवेश करके उनमें आपस में झगड़े करवा देता हूँ। तो मैं आपस में झगड़े शुरू हो गए, नहीं मैं पहले पीऊंगा, मैं वरिष्ठ हूँ। कई भक्तों में भी होता है ना, मैं वरिष्ठ हूँ, मुझे पहले स्थान मिलना चाहिए। तो वहाँ शुरू हो गया, मैं वरिष्ठ हूँ। कोई कहने लगा नहीं नहीं मैं बूढ़ा हूँ, मैं वैसे ही मरने वाला हूँ, पहले मुझे दे दो। कोई कहने लगे, कुछ जो बड़े कमजोर थे जिनके अंदर शक्ति नहीं थी बाकी असुरों से लड़ने की, वो कहने लगे कि देखो ये जो मंथन हुआ है ये दोनों ने किया है, देवताओं ने भी किया है, उन्हें भी भाग मिलना चाहिए, आपको नहीं मिलना चाहिए केवल। तो ऐसे आपस में बहुत झगड़े हो गए। और उस समय भगवान ने बहुत सुंदर अवतार लिया, मोहिनी रूप। तो मोहिनी अवतार, अब जब सारे सौंदर्य के जो स्रोत हैं जिनसे सारे सौंदर्य आते हैं, जब वो एक सुंदर रूप लें, एक स्त्री का रूप लें, तो क्या सौंदर्य होगा। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना सीमित है। किसी फिल्म की हीरोइन की कल्पना हम लोग कर लेंगे कि हाँ उसकी तरह सुंदर रहे होंगे या कोई और, लेकिन ये सब नहीं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान का क्या सौंदर्य रहा होगा जब उन्होंने मोहिनी अवतार लिया। शिव जी तक विचलित हो गए थे इस अवतार को देखकर। तो शिव जी को धीर व्यक्ति कहा गया है, धीर अर्थात जो बिल्कुल विचलित नहीं होते, धीरस्तत्र न मुह्यति, मोह में नहीं पड़ते। लेकिन शिव जी भी जब इस मोहिनी, वैसे शिव जी ने प्रार्थना की थी आगे भगवान से कि मोहिनी अवतार दिखाइए, मैंने, शिव जी चले गए थे, देखा नहीं था। भगवान ने कहा नहीं आप देख नहीं पाएंगे, रहने दीजिए, नहीं मुझे तो देखना है। ठीक है, भगवान ने दिखाया और शिव जी भागने लगे पीछे पीछे, उनके सारे अनुयायी खड़े हैं, उनके शिष्य खड़े हैं जो उनको स्वामी स्वामी कहकर चिल्ला रहे, और वो बोले स्वामी उधर ही रहो, मैं तो जा रहा हूँ। शिव जी भी विचलित हो गए थे। तो कितना सुंदर अवतार होगा मोहिनी अवतार भगवान का। भगवान ने लिया असुरों को केवल धोखा देने के लिए, और फिर असुरों से कहा, असुर बड़े प्रभावित हो गए मोहिनी को देखकर। पहले तो लक्ष्मी देवी थी जो कि भगवान की शक्ति है, और अब तो स्वयं शक्तिमान एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर आए थे। तो सारे असुर कहने लगे कि सब ने उनको दे दिया अमृत का वो पात्र, आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। मोहिनी मूर्ति ने कहा ठीक, जो कहूंगा, जो कहूंगी, कहूंगा नहीं, भगवान ने कहा तो आप स्वीकार करेंगे, बिल्कुल स्वीकार करेंगे। ठीक है, आप लोग लाइन में बैठ जाइए, एक इस तरफ देवता, इस तरफ असुर। तो फिर वो देवताओं को देने लगे भगवान, असुरों ने देखा लेकिन चुप रहना पड़ा, क्योंकि वचन दिया था कि नहीं जो भी आप कहेंगे हम कोई विरोध नहीं करेंगे। और बीच में कथा बहुत लंबी है, राहु आ गए इत्यादि। तो खैर, देवताओं की अंततः विजय हुई। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बात ये हम देखते हैं कि इस प्रसंग का दोनों के लिए, असुरों के लिए और देवताओं के लिए, समय एक ही था, स्थान एक ही था, कार्य एक ही था, उद्देश्य एक ही था, लेकिन फिर भी जीत उनकी हुई जहां भगवान थे। ये हमारे लिए संदेश है। हम जब इस भौतिक जगत में रहते हैं तो हमारे कार्य एक जैसे हैं, जैसे बाहर के लोग कार्य करते हैं वैसे हम भी करते हैं। स्थान एक है, जैसे वे लोग रहते हैं हम भी रहते हैं। स्थान एक है, काल एक है, कार्य एक है, उद्देश्य भी एक होता है, सफलता पाना चाहते हैं। लेकिन जिसके पास भगवान है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः, जहां भगवान है, जहां भक्त है, केवल विजय वहीं होती है। इसीलिए देवताओं की विजय हुई। तो हमें ये जानना चाहिए कि जीवन में अगर हमें संग्रह करना है, हम लोग बहुत सारी चीजों का संग्रह करते हैं। हम लोग